أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں میں نے ایک نیا سلسلہ مضامین کا شروع کیا ہے جس کا تعلق تقویٰ سے ہے. میں یہ بیان کر رہا تھا کہ تقویٰ کی کمی کے نتیجے میں یا خود اپنی حالت سے غفلت کے نتیجے میں اور آخری تجزیے کے طور پر دراصل یہ ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں. انسان بسا اوقات ایسی غلطی کرتا ہے اور اس غلطی پر اصرار کرتا چلا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں خود بھی ٹھوکر کھاتا ہے اور اگر وہ معاملہ جماعت کے نظام سے تعلق رکھتا ہو تو کثرت سے دوسروں کے لیے بھی ٹھوکر کا موجب بن جاتا ہے. اور اسی طرح دنیا میں آئے دن فتنے پلتے اور سر اٹھاتے ہیں. جہاں تک انفرادی غلطیوں کا تعلق ہے انسان کا اپنے خدا سے معاملہ ہے اور انفرادی غلطی خواہ کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو اس کو وہ اہمیت حاصل نہیں جو جماعتی غلطی کو ہے, کیونکہ جماعتی غلطی کے نتیجے میں نظام برباد ہوتا ہے اور آئندہ کے لیے نسل در نسل لوگوں کے لیے ٹھوکر کھانے کے سامان پیدا ہوتے ہیں. ایک آدمی نہیں ڈوبتا بلکہ ہزاروں لاکھوں بعض دفعہ کروڑوں کو لے ڈوبتا ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے میرا طریق یہ رہا ہے کہ جماعتوں میں جب بھی اس قسم کے فتنوں نے سر اٹھایا بیشتر اس کے کہ وہ سر اٹھتا ان فتنوں کی خوب اچھی طرح بیخکنی کرنے کی توفیق ملی, لیکن یہ معاملہ میرے اور ان جماعتوں کے درمیان خط و کتابت کی حد تک ہی محدود رہا. اب میں سمجھتا ہوں کہ ایسے معاملات ہیں کہ ساری جماعت کے علم میں آنے چاہیے اور ساری جماعت کو معلوم ہونا چاہیے کہ فتنہ کیا ہے, کس طرح پلتا ہے, کس طرح سر اٹھاتا ہے اور کس طرح بعض دفعہ بڑے بڑے متقی نظر آنے والے انسان خود اپنے نفس کے دھوکوں میں مبتلا ہو کر ساری جماعت کے لیے ایک ابتلا بن جاتے ہیں اور شیطان کے لیے ایک اعلی کار بن جاتے ہیں. بعض ایسے شخص عمدن بل ارادہ بھی ایسی شرارت کرتے ہیں مگر وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں شاذ کے طور پر کہیں ہوں گے, لیکن بہت سے ایسے ہیں جو اپنی بے وقوفی کے نتیجے میں, آنکھیں بند کرنے کے نتیجے میں, تقویٰ کی کمی کے نتیجے میں ایسی غلطیوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں اور مستقلاً میرے لیے جماعت کی خاطر ایک پریشانی پیدا کرتے رہتے ہیں. آج کے خطبے میں جماعت احمدیہ جرمنی سے متعلق میں بعض باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اکثر آپ احباب کے علم میں نہیں. एक लंबे अरसे से मैं ये महसूस कर रहा था कि आपकी मजलिस आमला अपने अमीर का पूरी तरह एहतराम नहीं करती और उसमें ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो एक दूसरे को हकारत से देखते, एक दूसरे की तजलील करने की कोशिश करते और अमीर की इज्जत और एहतराम का ख्याल रखे बगैर मजलिस में इस किस्म की आजादाना बातें करते हैं जो यकीनन बदतमीजी पर मुंतज हो जाती हैं। एक ऐसी हस्ती मौजूद हो जिसका दिल में अदब और एहतराम हो, जो निजाम जमात की नुमाइंदा हो, उसके सामने ऊंची आवाज करना ही बदतमीजी है। बजाय ये कि बगैर उसकी इजाजत के आपस में गुफ्तगु शुरू कर दें, एक दूसरे को तान और तशनी का निशाना बनाएं, एक दूसरे पर बदजनियां करें और मजालिस आमला के वकार को मजरूह कर दें। इस किस्म की शिकायत मुअय्यन तौर पर मुझे नहीं पहुंची, मगर बसा औकात जब मैंने अमीर साहब से हाल पूछा तो वो चूंकि बहुत ही नेक मिजाज, सादा, शरीफ नफ्स इंसान हैं, शिकायत के आदी नहीं, मगर बड़े ही दर्द के साथ उन्होंने कहा कि शायद मुझे तजुर्बा नहीं, शायद मैं लाइल्मी की वजह से मजलिस आमला को संभाल नहीं सकता, और ऐसे ऐसे वाकयात हो जाते हैं। चुनांचे गुज़श्ता चंद साल के अरसे में कम से कम दो मरतबा मैं इस मजलिस आमला के साथ बैठा और बड़ी तफसील के साथ उनको समझाया कि क्या बात गलत है, क्या दुरुस्त है, क्या आपने नहीं करनी और क्या बात करनी चाहिए, और इस मामले में अमीर के वकार को जमात में कायम करने के लिए आपको मददगार होना चाहिए, किन छोटी छोटी कमीनी बातों से एतराज जरूरी है, उसके नतीजे में जमात में फितने पैदा हो सकते हैं। अगर मजलिस आमला बटी रहे और इश्तराक का नमूना बनी रहे तो बाकी जमातों की तरबियत कैसे करेगी। लेकिन मालूम होता है कि इन बातों का कोई खास असर मजलिस आमला के बाज़ मेंबरों पर नहीं पड़ा। उस वक्त तक मैंने ये फैसला नहीं किया था कि पूरी सख्ती के साथ अब इस फितने को हमेशा के लिए कुचला जाएगा, क्योंकि उनमें से हर मेंबर अपनी जात में अच्छा दिखाई देता था, बहुत खिदमतें करने वाला, बहुत ही बज़ाहिर जमात के साथ इखलास और कुर्बानी का ताल्लुक रखने वाला, और हरेक ये समझता था कि मेरा कसूर नहीं दूसरे का कसूर है। लेकिन जब मैंने खूब खोलकर सारे मामलात उनको रोशन कर दिए, उसके बाद मैंने ये फैसला किया कि अब अगर फिर ऐसी कोई हरकत हुई तो महज नसीहत से काम नहीं लिया जाएगा, बल्कि जो मेरी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने डाली है मैं उसको हर कीमत पर अदा करूंगा। अब नए फितने का आगाज इस तरह हुआ कि जलसा सराना पर मुकर्रम अमीर साहब जब मुझे मिलने के लिए आए तो इनसे मैंने पूछा क्या हाल है, कैसी आपकी इमारत चल रही है, तो शिद्दत जज्बात से बेकाबू हो गए और बहुत मुश्किल से जब्त करने के बाद मुझे ये बता सके कि कुछ अरसे से हालात ऐसे होते चले आ रहे थे जिसके नतीजे में यूं मालूम होता था कि जैसे एक ग्रोह मेरे मुकाबले पर खड़ा है, लेकिन गुज़श्ता मजलिस आमला में जो मजलिस शूरा के बाद हुई उसमें मेरे नायब अमीर ने और मुरब्बी इंचार्ज ने मेरी नहायत खतरनाक बेइज्जती की है और खुले खुले लफ्जों में बागियाना रवैया अख्तियार करते हुए मेरे साथ बदतमीजी का सलूक किया गया है। इसका क्योंकि ताल्लुक मजलिस शूरा की एक कार्रवाई से था, इसलिए मैंने अमीर साहब से गुजारिश की कि आप इस मामले को बिल्कुल दिल से निकाल दें, अब ये मेरा काम है कि मैं फैसला करूंगा अब मजलिस आमला की कार्रवाई की जो कैसेट है वो मुझे भिजवाएं ताकि किसी एक आदमी की रिपोर्ट से मैं कोई नतीजा अखज़ न करूं। मैं उस कार्रवाई को सुनूंगा, मुतलका हिस्सों की जो कार्रवाई है, और फिर बराह रास्त नतीजा निकालूंगा। इसके अलावा मैंने उनसे ये गुजारिश की कि चूंकि मजलिस आमला की कार्रवाई रिकॉर्ड नहीं हुई, यानी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, आवाज को महफूज नहीं किया गया, इसलिए आप उसके मुतालिक मुझे अपनी तफसीली रिपोर्ट लिख कर दें। उनकी रिपोर्ट आने के बाद मैंने मुरब्बी इंचार्ज को उस रिपोर्ट की नकल भिजवाई और उनसे पूछा कि मुझे ये बताइए कि इस रिपोर्ट में आपकी तरफ जो बातें मंसूब की गई हैं उनमें से कौन कौन सी गलत हैं। उनका यह जवाब आया कि वो बातें तो गलत नहीं, लेकिन पूरी तस्वीर वाजे नहीं की गई, इसलिए मुझे इजाजत दें कि मैं तस्वीर का वो हिस्सा भी उजागर कर दूं जो इस रिपोर्ट में दर्ज नहीं। मैंने कहा आपको इजाजत है, आप तफसील से मुझे लिखें कि कहां कहां अमीर साहब ने ऐसी बात नहीं लिखी जो लिखनी चाहिए थी। चुनांचे वो रिपोर्ट भी मेरे सामने आ गई। ये आगाज हुआ है इस फितने का, जिसके नतीजे में फिर मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ी और आपके बाद पुराने कारकुनों को सिलसिले से कामों से कुल्लियतन अलहदा कर देना पड़ा। लेकिन इससे पहले कुछ और पस मंजर है, वो भी मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूं। जब मौजूदा मुबल्लिग मौजूदा नहीं बल्कि सबका मुबल्लिग इंचार्ज जिनके साथ ये मामला हुआ या जो इसका इसके झगड़े के बानी मुबानी बने, उनका तबादला मैंने जर्मनी में किया तो मुझे उनकी तरफ से एक बहुत ही अजीब गरीब चिट्ठी मौसूल हुई जिससे मुझे बहुत धक्का लगा। उस चिट्ठी का लुबे लुबाब यह था कि अमलन मुझे हर किस्म के इख्तियारात होने चाहिए, अमीर अपनी जगह पर, लेकिन मुझे हर किस्म के इख्तियारात होने चाहिए। और उस चिट्ठी का मजमून पूरा तो नहीं मैं बयान कर सकता, मुख्तसरन चंद फिक्रे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, सिर्फ जर्मनी की जमात की खातिर नहीं बल्कि तमाम दुनिया की जमातों के सामने, ताकि उनको मालूम हो कि किस तरह अनानियत एक भेष बदल कर सर उठाती है और कैसे कैसे मुतालबों में तब्दील हो जाती है। ये आपको याद रखना चाहिए कि सिलसिले के नए दस्तूर के मुताबिक जो इस वक्त नाफिज़ुल्अमल है और जिससे दुनिया भर की जमातों के उमरा और नायब उमरा और मजालिस आमला के मेंबरान और खसूसियत से मुरब्बी वाकिफ हैं, अगर अमीर मुरब्बी सिलसिला ना हो तो मुरब्बी सिलसिला को नायब अमीर बना दिया जाता है, जो जरूरी नहीं मगर बनाया जा सकता है। और यही मेरा फैसला था कि इन साहब को भी नायब अमीर बनाया जाएगा। इनके मशवरे ये थे कि तबलीग के काम की निगरानी खाकसार के फराइज में से एक अहम फरीजा होगा, इसको अंजाम देने की गरज से तमाम जमातों के सेक्रेटरियान तबलीग का खाकसार से बराह रास्त रब्ता होगा। तरबियत का शोबा भी बराह रास्त खाकसार की जरिए निगरानी होना चाहिए। मजालिस आमला में खाकसार को कोई ओहदा, मसलन नायब अमीर वगैरह नहीं होना चाहिए, बल्कि मजलिस आमला में खाकसार की हैसियत मुबल्लिग इंचार्ज की हो और बतौर मरकजी नुमाइंदा के खाकसार मजलिस आमला के फैसलों और उनके काम की अमूमी निगरानी करे, यानी अमीर से बाला मजलिस का हिस्सा बनते हुए ये उन पर गोया मेरी तरफ से बराह रास्त अमीर से ऊपर एक निगरान बनकर वहां बैठे रहे। ज़ैली तंजीमों के सदरान का मुबल्लिग इंचार्ज के साथ गहरा रब्ता होना चाहिए। सदर साहबान हुज़ूर अनवर की खिदमत में रिपोर्टें भिजवाएं, उनकी नकूल खाकसार को भी भिजवाएं। خاکسار کو جماعت میں تبلیغی اور تبلیغی کاموں کو تیز کرنے کے سلسلے میں جو معلومات درکار ہوں گی، محترم امیر صاحب اور مجلس عاملہ کے متعلقہ شعبہ کا فرض ہوگا کہ خاکسار کو مہیا کرے. یعنی عملاً مطالبہ یہ ہے کہ میرا نام امیر نہ رکھا جائے، مگر امیر اور مجلس عاملہ سے بالا ایک حیثیت مجھے وہاں دی جائے، اس کے بغیر میں صحیح کام نہیں کر سکوں گا. میں نے جو ان کو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ نائب امیر جماعت مغربی جرمنی ہیں اور مجلس عاملہ میں آپ کو یہی حیثیت حاصل ہوگی. آپ کی ذمہ داری ہے کہ محترم امیر صاحب کو ہر معاملہ میں مناسب مشورہ دیا کریں اور امارت کے وقار کو جماعت میں بڑھانے کے لیے ممد و معاون ثابت ہوں. اگر وہ آپ کا مشورہ قبول نہ کریں تو شرح صدر کے ساتھ امیر کے سامنے سر تسلیم خم کریں، لیکن اگر آپ امیر کے فیصلہ کو جماعتی مفاد کے خلاف سمجھیں تو امیر کی معرفت اپنا اختلافی نوٹ مجھے بھجوائیں. اس کے علاوہ جتنے اختیارات امیر آپ کو دینا چاہے دستور کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، یہ اس کا کام ہے. کہ امیر اگر آپ پر اعتماد رکھتا ہے تو جتنا چاہے آپ کو اختیار دے، میں خود کوئی اختیار معین نہیں کروں گا، ورنہ نظام جماعت چلانے میں دوغلا پن اور تضاد پیدا ہو جائے گا. اس کے بعد اور بہت سی باتیں ان کو سمجھائیں اور آخر پر لکھا کہ مندرجہ بالا وہ تمام وہ باتیں ہیں جن کے متعلق مجھے آپ پر حسن ظن تھا کہ پہلے اس کا شعور رکھتے ہوں گے، مگر آپ کے لمبے سلسلہ سوالات نے میرے حسن ظن کو ٹھوکر لگائی ہے. اور بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک اور موقع پر کہ مجھے فتنے کی بو آ رہی ہے، آپ تقویٰ سے کام لیں اور امیر کے سامنے پوری طرح سر اطاعت خم کریں، ورنہ آپ کو آپ خدمت سے محروم ہو جائیں گے. اور ایک موقع پر ایک انگریزی خط میں نے ان کو لکھا کہ مجھے میں تو اب میرے پاس دعا کے سوا چارہ نہیں رہا کہ دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹوٹل ڈس انٹیگریشن سے بچائے. اس پر ان کی طرف سے مجھے اطمینان کا خط ملا اپنی طرف سے کہ مطمئن رہیں میں بات سمجھ گیا ہوں، میری طرف سے آئندہ اس معاملے میں کبھی آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی. یہ ہے پس منظر اس نئے جھگڑے کا. یعنی یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو سختی کی گئی ہے اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حد سے زیادہ کی گئی ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلے کرنی چاہیے تھی اور تاخیر ہو گئی. اگر یہ غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اب جو واقعہ ہوا ہے وہ اس کا آغاز مجلس شورا میں دو کئی طریق پر ہوا. میں اگر کیسٹ منگوا کر نہ سنتا تو میری توجہ صرف اس بات کی طرف مبذول کرائی گئی تھی کہ صدر لجنہ نے وہاں کچھ ایسی باتیں کہیں جن کے نتیجے میں مربی صاحب نے اپنے اختیارات سے بہت بڑھ کر ان سے سختی کی، یہاں تک کہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، اور گویا یہی بات تھی. لیکن جب میں نے وہ کیسٹ سنی اور جب میں نے امیر صاحب سے رپورٹ منگوائی تفصیل لی اور خود مربی صاحب انچارج سے رپورٹ منگوائی، تو جو باتیں سامنے آئیں وہ یہ ہیں جو میں بیان کرتا ہوں اور آپ کے علم میں آنی چاہیے، سب دنیا کی جماعتوں کے علم میں آنی چاہیے کہ مجلس شورا کیا ہوتی ہے، کس کو کیا اختیار ہے، کون کس طرح حد سے تجاوز کرتا ہے جو جماعت کے لیے ناقابل برداشت ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ جب رد شدہ تجاویز پڑی جا رہی تھیں، آپ کے علم میں آنا چاہیے جن کو شورا کا تجربہ نہیں کہ رد شدہ تجاویز وہ تجاویز ہیں جن کو خلیفہ وقت کی منظوری کے ساتھ मजलिस में पेश करने की इजाजत नहीं होती और इस बात का ऐलान किया जा रहा होता है कि इन तजावीज को ना पेश करने की इजाजत है ना इन पर किसी को तबसरा करने की इजाजत है। जब ये तजावीज पढ़ी जा रही थी बार बार उस मुरब्बी इंचार्ज ने उठकर सेक्रेटरी को टोका और बीच में आकर अपने तबसरे शुरू किए कि मेरे नजदीक इसमें यह पहलू होना चाहिए था, ये मुख्तसर तबसरे किए और कई दफा ऐसा किया और उसके बाद ये कहा कि मैं अपनी इख्तितामी तकरीर में इन अमूर पर मजीद कुछ बयान करूंगा। अमीर साहब क्योंकि उर्दू नहीं जानते थे या ट्रांसलेशन अगर थी तो इंतजाम दुरुस्त नहीं था, वो शायद इस वजह से या अपनी हद से ज्यादा इनकिसारी और शराफत की वजह से खामोश रहे और वहां कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में इनको मना किया कि आपको कोई हक नहीं था कि आप सिलसिले की मौरूफ रवायात के खिलाफ जिनकी हिफाजत करना आपका फर्ज है ना कि उनको तोड़ना आपका फर्ज है आप ऐसी हरकत करते, इसलिए आपको इजाजत नहीं। इस पर बजाय इसके कि खामोशी इख्तियार करते सेक्रेटरी मजलिस शूरा से फोन पर राब्ता किया और उसको कहा कि वो अमीर साहब को ये कहे कि मैं आपकी तरफ से इजाजत तो नहीं मिली लेकिन मैं जरूर इसके मुतल्लिक कुछ कहना चाहता हूं। अब सेक्रेटरी मजलिस शूरा को शूरा का मेंबर कोई बात बराह रास्त कह ही नहीं सकता, उसका ताल्लुक ही कोई नहीं, सदर मजलिस जो है उसके साथ उसका हर शख्स का ताल्लुक होता है। सेक्रेटरी मजलिस शूरा तो सदर मजलिस के मतहत एक कारकुन है, उससे ज्यादा उसकी वहां कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन बहरहाल फोन के जरिए जबकि खुद नायब अमीर थे अगर कोई इसरार करना था जो इसरार नहीं करना चाहिए था बिल्कुल नाजायज था तो बहरहाल बात कर सकते थे। अमीर साहब ने उसके बावजूद इज्जत नहीं दी जो बहुत अच्छा किया और दुरुस्त किया, लेकिन इस अरसे में ये काफी ऐसी नामुनासिब बातें कह चुके थे जो रवायत सिलसिला के सरासर मुनाफी था। फिर दूसरी ताज्जुब अंगेज बात मेरे सामने ये आई कि इख्तितामी खिताब बजाय अमीर के नायब अमीर का हो रहा है और मेरी वाज़ह हदायात के खिलाफ मजलिस शूरा की कार्रवाई उर्दू में हो रही है, हालांकि मैंने बारहा ताकीद की है मजलिस शूरा तो एक बहुत ही अहम इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा निजाम जमात का अहम हिस्सा है जिसके ऊपर मेरी हदायत को सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। मेरी हदायत है कि जिस मुल्क की जो जुबान है जो हमारे रस्मी इजलासात हैं उनमें उसी मुल्क की जुबान बोली जाएगी, अगर किसी को समझ नहीं आती तो उसका तर्जमा होगा, वो अपनी जुबान में बात करें लेकिन उसका तर्जमा उस सूरत में होगा कि वो एक अहम मेंबर हो, उसकी जरूरत है, वो मशवरा उसका मशवरा दरकार है मगर वो मजबूर है, ऐसा इस्तेसना हो सकता है। और ये भी इस्तेसना हो सकता है कि अगर जर्मन शूरा है और जर्मन जुबान में कार्रवाई हो रही है तो उसका उर्दू तर्जमा कर दिया जाए उन लोगों की खातिर जो जर्मन पूरी तरह नहीं समझते लेकिन समझनी चाहिए। इस हदायत को सरासर नजरअंदाज करते हुए पूरी कार्रवाई उर्दू में हो रही थी, फिर सिलसिले की कदीम और मौजूद रवायात को ठोकर मारते हुए अमीर के आखिरी खिताब की बजाय नायब अमीर साहब का आखिरी खिताब था और वो आखिरी खिताब तो ऐसा था जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। सबसे पहले तो मुझे यूं लगा जैसे बाद लोग तो खलीफा बनने की कोशिश करते हैं और वही अंदाज बनाते हैं जो खिलाफत का एक खसूसी हक है और जमात उस अंदाज के साथ एक मोहब्बत रखती है और उसको उसी ताल्लुक की वजह से बर्दाश्त करती है और ये जमात और खिलाफत के दरमियान एक ऐसा रिश्ता है जिसे कोई और शख्स ना समझ सकता है ना उसमें दखल देने का उसको हक है। लेकिन इससे अलग एक हजरत मुस्लिम मौत का भी अंदाज था और वो आपकी जात पर ही फपता था। मुझे तो आज तक याद नहीं कि कभी मैंने उस रंग में अपना खिताब अपनी सेहत के जिक्र से शुरू किया हो। कि अब जमात को फिक्र होगी कि मेरी हालत कैसी है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुज़श्ता चंद दिनों से तबीयत दलील रही है और फिर ये कुछ वाकयात हुए और फिर ये हुआ। ये खास अंदाज था हज़रत मुस्लिम माउद का, जिसको जमात बहुत पसंद भी किया करती थी और शौक से सुना करती थी। लेकिन उसके बाद ना हजरत खलीफतुल मसीह सारिस ने कभी ऐसा किया ना मैंने किया, बल्कि हमेशा शर्म महसूस की कि जमात के वक्त में से अपनी जाती गुफ्तगू के मुतल्लिक वक्त निकालूं। लेकिन मजलिसी शूरा में तो इसका सवाल ही कोई नहीं। अगर कोई ऐलान करवाना हो सेहत के लिए तो हर एमडी का हक है, वो ऐलान करवाए जाते हैं, लेकिन वो जलसों में करवाए जाते हैं। शूरा में भी अगर कराना हो तो महज एक दरखास्त है जो कोई शख्स अमीर की नुमाइंदगी में पढ़कर सुना देगा, लेकिन उसका एक पहला हिस्सा इस बात पर ही मुश्तमिल था। उसके बाद उन्होंने फरमाया कि मैं सदरे लजना के मुतल्लिक कुछ बातें कहनी चाहता हूं, और इस बात को मैंने अपने इख्तितामी खिताब के लिए उठा रखा था। इस बात से कता नजर कि सदर लजना ने कोई गलत बात कही थी या नहीं कही थी, इस हिस्से को मैं अलग लूंगा। आपको याद रखना चाहिए कि मजलिस शूरा में जब कोई शख्स नाजायज बात कहता है, अपने इख्तियारात से तजावुज करके बात कहता है, तो हर मंबर मजलिस शूरा का हक है, बल्कि फर्ज है कि वो अदब से उठकर अमीर इजाजत दे तो उसको मुतवज्जे करे, हाथ उठाए, अमीर के सामने आए, उससे अर्ज करे कि मेरे नजदीक ये निजाम सिलसिला की खिलाफ वर्जी है और ऐसी नापसंदीदा बातें मजलिस शूरा में नहीं होनी चाहिए, या इनका ताल्लुक नहीं है, यह हक है। लेकिन अमीर अगर नहीं सुनता या इनकार कर देता है तो फिर हरगिज कोई हक नहीं है किसी को तो इस बारे में जुबान खोले। हां, बाद अज़ां वो अमीर की मार्फत खलीफतुल मसीह को मुतवज्जे करा सकता है कि हमारी शूरा में यह बात हुई है, मेरे नजदीक रवायात सिलसिला के मुनाफी है, अगर मैं दुरुस्त हूं तो फिर अमीर को हदायत की जाए कि आंदा इसका ख्याल रखे, अगर मैं गलत हूं तो मेरी इसलाह की जाए। यह एक मौद्देबाना दुरुस्त मुत्तकियाना तरीक है। लेकिन उस मौके पर जिन साहब का मैं जिक्र कर रहा हूं, उन्होंने बजाय इसके कि अमीर साहब से मौद्देबाना दरखास्त करते कि ये गलत बातें हो रही हैं आप इनको रोक दीजिए, अपना एक हक महफूज रखा, गोया खलीफा वक्त उस पर बाद में तबसरा करेगा। और तबसरे का अंदाज भी बिला शुबा ना सिर्फ ये कि अमीर से बाला है, बल्कि बाद बातों में खलीफा वक्त से भी मुमताज है। और उस तबसरे के दौरान आप फरमाते हैं कि फलां खातून, फलां नाम की खातून कादियान की परवरिश याफ्ता हैं, उनकी तकरीर तो बहुत उम्दा थी, और मैं ये मशवरा देता हूं सदर साहब अजना को कि ऐसे उम्दा तरबियत याफ्ता खवातीन से हदायतें लिया करें और उनकी हदायत और उनके इरशादात और उनके ताबे और उनके तजारिब से फायदा उठाकर लजना के काम चलाएं। इन्ना लिल्लाह इन्ना इलैहि राजिऊन, खलीफा वक्त किसी को सदर मुकर्रर करता है और नायब अमीर उठकर अपनी मुरब्बियाना हैसियत के बिल्कुल गलत इस्तेमाल करते हुए ये मशवरे दे रहा है और उनकी एक खातून की जात नाम लेकर इस तरह तारीफ करता है जिस तरह खलीफा वक्त और अच्छे कारकुनों की नुमाया तौर पर तारीफ कर दिया करता है। लेकिन कभी नामुमकिन है कि कोई खलीफा वक्त ये कहे कि मैंने जिसको सदर मुकर्रर किया है कोई फर्द जमात उससे बाला है और उसका सदर का फर्ज है कि ओहदेदारों से हटकर मेरी हदायत से अलग होकर फलां की मुताबियत करे और उससे सबक सीखे। वह सदारत को भी मेरी मुकर्रर करदा सदारत को भी कैंसिल कर दिया और अपनी तरफ से जिस तरह आप अमीर बालाए अमीर बन गए थे एक सदर बालाए सदर मुकर्रर फरमा दिया। नहायत ही बेहुदा हरकत थी, मगर वही बात हुई जो एक हदायत की खिलाफवर्जी के नतीजे में होनी चाहिए थी। उर्दू में बातें हो रही थी, तर्जमा अगर हो भी रहा था तो पता नहीं किस किस्म का था, मगर अमीर साहब को उस वक्त पता नहीं लगा कि क्या हुआ है। बाद में जब अमीर साहब को रिपोर्टें मिली تو اس پر مجلس عاملہ میں یہ گفتگو شروع ہوئی. مجلس عاملہ میں جو رویہ اختیار کیا گیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ناپسندیدہ اور ناپاک رویہ تھا. شورا میں ایک اور بات بھی ایسی تھی جو انہوں نے کی, جس پر امیر صاحب نے ان کی بات پرس کی, وہ یہ تھی کہ اپنی طرف سے یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ جماعت جرمنی ہر جمعرات کو اس غرض سے روزے رکھے کہ 100 سالہ مساجد کی تعمیر میں اس میں ان روزوں میں خاص دعائیں مانگی جائیں. مجھے یاد ہے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے ایک تحریک فرمائی تھی کہ جمعرات کو روزے رکھے جائیں, آخری جمعرات کو مہینے میں ایک دفعہ, اور وہ تھی 100 سالہ جبلی کی کامیابی کے سلسلے میں. اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں کہ کبھی کسی امیر نے اپنے طور پر ایسی تحریک کی ہو, میں نے کبھی نہیں کی. کیونکہ بعض دفعہ ان چیزوں کو بھی رفتہ رفتہ ایک دکھاوا سا بنا لیا جاتا ہے کہ فلاں دن کا روزہ رکھنا ہے سب نے, وہ پتہ نہیں کس حال میں رکھتے ہیں. جب تک دل میں درد پیدا نہ ہو, ایک خاص توجہ نہ ہو, دعا کو بھی کھیل نہیں بنانا چاہیے. اور اگر اس قسم کا فیصلہ کسی خاص اہمیت کے پیش نظر کسی نے کرنا ہے تو خلیفۃ المسیح کا کام ہے. باقی ہر شخص اٹھ کے روزوں کی تحریک شروع کر دے, جو اپنی طرف سے فلاں قسم کے نوافل کی تحریک شروع کر دے, بالکل غلط ہے اور روایات سلسلہ کے منافی ہے. جب امیر نے مجلس عاملہ میں یہ بات کہی تو ان صاحب نے جواب دیا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر جماعت جرمنی میرے جیسے انسان سے استفادہ نہیں کر سکتی, یہ پڑے ہیں آپ کے کاغذات. وہ منہ پہ کاغذات مارے کہ اب جو چاہیں کریں, میں اس معاملے میں بری ذمہ ہوتا ہوں. اگر میری ہدایات کے تابع کام کرنا ہے امیر نے اور عاملہ نے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ پڑی ہے آپ کی عہدے داریاں اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے اس پہ نوٹ لکھا کہ دراصل آپ میز پر یہ کاغذ مار رہے تھے کہ یہ رہا میرا وقت اور یہ میری رہی ساری عمر کی خدمات, جائیں جہنم میں, میرا اب ان سے کوئی تعلق نہیں. امیر کو اس دوران جو گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا وہ یہ تھا, ایک کہ امیر صاحب آپ نے میرے مشورے کا انتظار کیے بغیر مجھ پر کمیشن کیوں مقرر کر دیا ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں کمیشن مقرر کرنے والے؟ اور میں آپ کے کسی کمیشن کے سامنے جواب دینی ہوں گا. کھلی کھلی واضح بغاوت تھی. امیر صاحب کو اگر تجربہ ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ اٹھ کے باہر نکل جاؤ, میں تمہیں معطل کرتا ہوں اور میں خلیفۃ المسیح کی خدمت میں یہ سفارش کروں گا کہ ایسے شخص کو جماعت میں نہیں رہنا چاہیے. لیکن وہ بھولے شریف انسان ہیں, ان پہ لوگ ظلم کرتے رہے اور چپ کر کے برداشت کرتے رہے, اور بدنصیبی ہے جماعت جرمنی کی کہ ایسے اعلیٰ متقی شریف النفس اور منکسر مزاج امیر کی ان کی عاملہ کے ممبران بےزتی کرتے چلے آ رہے ہیں. میرا تو دل کھول اٹھا ہے یہ باتیں سن کر. میں نے یہاں تک ان کو لکھا تھا ایک دفعہ کسی مربی انچارج کو کہ دیکھیں, میں یہ مانتا ہوں کہ ان میں تجربے کی کمی ہے, لیکن خدا کے فضل سے وہ نہایت متقی انسان ہیں اور صاف گو اور سچے ہیں. اس لحاظ سے میں بحثیت خلیفہ ان کا ادب کرتا ہوں, یعنی خلیفہ ہونے کے باوجود, بحثیت خلیفہ نہیں, خلیفہ ہونے کے باوجود میں ان کا ادب کرتا ہوں. میں آپ سے بحثیت مربی یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی ان کا ادب کریں. یہ چٹھی ان کو اس سے پہلے ملی ہوئی ہے, میرے پاس ساری تاریخیں موجود ہیں, ان کا ریکارڈ محفوظ ہے. اس کے بعد ادب کا یہ حال تھا کہ دو باتوں میں کھلی کھلی بغاوت, اور ایک موقع پر کہا کہ میں جانتا ہوں آپ عورتوں کے تابع آ چکے ہیں, صدر لجنہ کے حق میں بات کر رہے ہیں, عورتوں کے نیچے لگ گئے ہیں. اور پھر کہا میں جانتا ہوں یہ ٹولہ جو آپ کے ساتھ ایک لگا ہوا ہے. اور پھر مجھے یہ لکھا کہ اپنی عقل اور سمجھ کا نمونہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں, میں تو اس حد تک گیا کہ میں نے امیر صاحب کو ایک موقع پر علیحدگی میں یہ سمجھایا کہ آپ اور میں الگ الگ نہیں ہونے چاہیے, ورنہ اگر آپ نے اس طرح ہی مجھے الگ رکھا گویا کہ اور میرے مشوروں پر عمل نہ کیا, تو جو لوگ آپ کے مشیروں اور آپ سے ناراض ہیں وہ میرے پاس آیا کریں گے اور اس طرح جماعت میں دو دھڑے بن جائیں گے. گویا خود मुखालफाना धड़े की सरदारी कबूल कर ली। ये नहीं कहा कि अमीर साहब आप मुतमईन रहें, कोई बड़े से बड़ा आदमी भी अगर आपके खिलाफ बोलता हुआ मेरे पास आएगा तो मैं उसको कहूंगा तू धतकारा हुआ शैतान है, यहां से रुख्सत हो। अमीर के खिलाफ मैं किसी किस्म की बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगा। अमीर को खलीफा वक्त ने मुकर्रर किया है और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में मुकर्रर किया है, और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मन असा अमीरी फकद असानी, जिसने मेरे अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की है, व मन असानी फकद असल्ला, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने खुदा की नाफरमानी की है। सारी उम्र ये बातें रखते हुए मुरब्बियान को यह भी नहीं पता लगा आखिरी उम्र में जाकर कि अतात होती क्या है और इखलास किस चीज का नाम है। चुनाचे मुसलसल मेरी हदायत के बावजूद, मेरे ये लिखने के बावजूद कि मैं इस शख्स का अदब करता हूं, हालांकि मैंने अमीर मुकर्र किया मेरे मतायत है, आप भी अदब करें, अदब का यह तरीका इख्तियार किया। और इनके बाद साथियों ने भी ऐसा ही रवैया अख्तियार किया जो नहायत नापसंदीदा था। अब मैं तफसील से वो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये बदबू थी जो मुझे बड़ी देर से आ रही थी। मैं चाहता था कि सुलझ जाएं, जैसा कि मैंने कहा कि मैं दुआ करता था कि अल्लाह ताला इनको ठोकरों से बचाए, अच्छे अच्छे काम करने वाले भी थे, लेकिन जहां जमात के मफाद का सवाल पैदा हो वहां मैं किसी जाति ताल्लुक को खातर में नहीं ला सकता, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इनमें से ये वो लोग हैं जिनमें से हरेक मुझे नहायत इखलास और मोहब्बत के खत लिखता है। ये वो लोग हैं जो ये लिखते रहे उनमें से बाज कि हम आपके पांव को चूमना चाहते हैं, लेकिन जानते हैं कि आप अपनी इनकिसारी की वजह से और तबी शर्म की वजह से इजाजत नहीं देंगे। लेकिन मेरे नजदीक इन चूमनों की, इन ऐसे फिक्रों की और पांव चुमवाने की ना कोई ख्वाहिश ना इसकी एक जर्रा भर कदर है। खलीफा वक्त एक निजाम का नुमाइंदा है। खलीफा वक्त आप सब मिलकर हैं और आपकी इज्तमाई शक्ल में एक खलीफा है जो आप सब की यानी निजाम जमात की इज्जत नहीं करता। वो झूठा है अगर वो ये कहे कि मैं खलीफा वक्त की इज्जत करता हूं। ये ऐसी बातें हैं जिनके मुतल्लिक कुरान करीम ने खूब खुलकर रोशनी डाली थी और खूब इस मामले को वाज़े फरमा दिया और बार बार वाज़े फरमाया। कुरान करीम ने एक मौके पर ये मजमून बयान फरमाया कि जो अल्लाह और रसूल के दरमियान तफरीक करते हैं, और बार बार ये मजमून बयान फरमाया, उनके सारे अमाल, उनकी सारी कोशिशें रद्द और जलील हैं, कोई उनकी हैसियत नहीं रहती। शुरू में मुझे यह समझ नहीं आती थी कि अल्लाह और रसूल के दरमियान तफरीक से क्या मुराद है, लेकिन बाद के तजर्बे से पता चला कि वो ये करते हैं, ऐसे लोग कहते ये हैं कि देखें खलीफा वक्त उसके जमा से जान सार अपनी अपने बाल बच्चों की जिंदगियां कुर्बान कर देंगे, लेकिन अमीर ये और बात, लेकिन अमीर ये और बात है, सदर खुदाम ये और बात है, फरान शख्स की और बात है, उससे हमारी लड़ाई, उससे हमारी दुश्मनी, मगर खलीफा वक्त के मुकाबले पे हम भला किसको खाते में ला सकते हैं। तो खुदा और रसूल की तफरीक भी इसी किस्म के लोग करते होंगे कि रसूल की किसी बात पे नाउजबिल्ला में जालिक नाराज होकर कह दिया कि खुदा की बात तो अलग हुई लेकिन यह कि रसूल की पैरवी करें हर बात में यह नहीं हो सकता। यही वो शैतानी वसाविस हैं जो निचले दर्जे पर मुंतकिल होते हैं, फिर और निचले दर्जों पर मुंतकिल होते हैं। बाज दफा अमीर के नीचे फिर ये सूरत पैदा हो जाती है कि अमीर तो हमारी सर आंखों पर, लेकिन उसका फलां ओहदेदार जो है वो दुरुस्त नहीं। और ये फितना पैदा किस तरह होता है, इसका आगाज खुदा ताला ने कुरान करीम के आगाज में तमसील की सूरत में बयान फरमा दिया, जो मैं बार बार बयान कर चुका हूं, लेकिन जिन्होंने नसीहत नहीं पकड़नी होती, जो कान बहरे हो चुके हैं, उनको आवाज आती ही नहीं, वो समझते नहीं कि क्या हो रहा है। खुदा ताला ने ये बहुत गहरा राज फितनों का हमें समझा दिया कि जब इबलीस ने इबा से काम लिया तो उसका इबा, उसका इनकार दरअसल उसकी अनानियत की गोद में पला था। पहले उसने अपने आप को बड़ा समझा, मगर खुदा से बड़ा नहीं, खुदा के मुकर्रर करदा अमीर से बड़ा समझा, उससे अपने आप को बेहतर समझा। और उसने ये नहीं कहा कि ऐ खुदा मैं तुझे तस्लीम नहीं करता या मैं तेरी अजमत को धुतकारता हूं और उसका इनकार करता हूं। ये कहा कि जिसको तूने अमीर बनाया है ये तो मुझसे छोटा और बेमानी है, मेरे मुकाबले पर इसकी कोई हैसियत नहीं, अना खैरू मैंने। कितनी गहरी हिकमत की बात है, हजारों साल गुजर चुके, आगाज मजहब की यही हकायत हमेशा दोहराई जाती है और जो जाहिल इंसान है उसको समझ नहीं आती। जिसकी आंखों में बसीरत नहीं है वो जाहिर के नूर से बाहर के नूर से फायदा नहीं उठा सकता, वो यही समझता कि ये क्या हो रहा है। और हमेशा जमात में जब फितने पैदा हुए इसी तरह हुए। कहा यह जाता है कि बाला अफसर वो तो ठीक है हमारा सर आंखों पर, लेकिन ये जो छोटा है ना ये शैतान, इसकी हम नहीं बात मानेंगे। अगर वो वाकई शैतान है नाअहल है तो तुम्हारा फर्ज है कि अदब के साथ बाला हस्ती जो भी है अमीर है या उससे ऊपर खलीफतुल मसीह है उनकी खिदमत में लिखो कि आपने जब जिस वक्त तक आप इसको अमीर बनाए रखेंगे हम जरूर इसकी अताअत करेंगे, लेकिन हमारी दरखास्त यह है कि ये बहसियत अमीर आपके शायान निशान नहीं है, निजाम जमात के ऊपर धब्बा डाल रहा है, फला गलती कर रहा है। यहां तक लिखना हरगिज ना गुस्ताखी है ना इबलीसियत है, लेकिन ये बात कहे बगैर ये कोशिश किए बगैर इनकार का फैसला अपने हाथ में ले लेना और ये कह देना कि हम इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे, ये है इबलीसियत जिसका जिक्र कुरान करीम के आगाज में हुआ और बार बार इस कहानी को दोहराकर हमें नसीहत फरमाई गई कि देखो फितने इस तरह उठा करते हैं, जब भी आइंदा फितने उठेंगे इसी तरह उठेंगे। और जहां तक मैंने वसी नजर डाली है अपनी जिंदगी के सारे तजर्बे पर मैं नजर डालकर आपको यकीन से कहता हूं कि कुरान करीम का बयान करदा फितनों का असलूब उसी तरह दोहराया जाता है, इसी तरह नफ्स धोखा देता है, इसी का नाम तकवा की कमी है, यह अनानियत है जो इबा बनकर फिर उठती है और बगावत बन जाती है। फिर एक और बात जो हमें कुरान करीम से मालूम होती है वो ये है कि अतात के साथ अदब जरूरी है, सिर्फ अतात काफी नहीं है। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक फरमाया गया कि आवाज भी ना ऊंची करो, वो लोग जो ऊंची आवाजें करते हैं उनको पता ही नहीं ईमान क्या है, वो ईमान खो देते हैं अपने। जिसका मतलब यह है कि सच्ची अतात अदब के बगैर मुमकिन नहीं है, वो खोखली रस्मी अतात कोई हैसियत नहीं रखती और हमेशा अतात करने वाले के लिए खतरा बनी रहती है। बस जब अमीर मुकर्रर किया जाता है तो उसके साथ मोहब्बत और अदब का ताल्लुक कायम करना जरूरी है, वरना अगर आप उसको अपने से हकीर समझते रहें बज़ाहिर अतात भी करेंगे तब भी आपके लिए हमेशा के लिए खतरा मौजूद रहेगा, आप ठोकर खा सकते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मज़मून को इतनी वजाहत के साथ खोल के बार बार पेश फरमाया कि एक मौके पर फरमाया कि देखो तुम्हारे ऊपर अगर एक ऐसा अमीर भी मुकर्र किया जाए जो हबशी हो, यानी अरबों को अपनी कौमियत पर नाज था और एक हबशी शख्स के मुतल्लिक कि वो आकर उनका अमीर बन जाए वो सोच भी नहीं सकते थे। मिसाल कैसी उम्दा दी है जो उनके लिए कराहत का सबसे बड़ा सामान रखती थी। फरमाया हबशी हो और गुलाम हो, अब अरबों के लिए गुलाम की अदात करना तो एक नाकाबिले तसव्वुर बात थी, सोच भी नहीं सकते थे और सख्त इससे तनाफुर पाया जाता था। फिर उनको अपनी सरदारियों और अकलों पर बड़ा नाज था। रसूल सल्लम ने फरमाया कि उसका सर मुनक्के के सर के बराबर हो, मुनक्के के बराबर हो यानी खुश किए हुए किशमिश के दाने जितना सर हो, इतना बेवकूफ और पागल हो। अगर ऐसा अमीर भी तुम पर मुकर्रर किया जाए तुम पर फर्ज है कि उसकी अताअत करो। यह है इस्लाम की अमारत की रूह और अताअत की रूह जिसे हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब खोल खोल कर बयान फरमा दिया और कुरान करीम ने भी आपके इन हकूक की खूब हिफाजत फरमाई। जो बातें मुख्तलिफ वक्तों में शैतान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को बदल करने के लिए फैलाते रहते थे, कुरान ने उन सब की तारीख महफूज कर दी और फितने के हर पहलू को हमेशा के लिए खूब खोलकर बयान कर दिया है। कुरान करीम ने जो पहलू बयान फरमाए हैं, एक भी ऐसा दुनिया में फितना नहीं जो उन पहलुओं से बाहर हो। बस मुसलमानों के लिए इस हर किस्म की खबरदारी के बावजूद, तंबीह के बावजूद दोबारा ठोकर खाना हद से ज्यादा जहालत और खुदकुशी के मुतरादिफ है। कुरान करीम फरमाता है कि बाज़ दफा लोग इस तरफ इतना पैदा कर है तो वही बात के निचले आदमी के खिलाफ, ऊपरले के खिलाफ नहीं करते बराह रास्त, ऊपर को इस तरह मुलव्वस करते हैं। कहते हैं कुरान करीम के मुताबिक, वो कहते हैं देखो रसूलुल्लाह सल्लम तो खुद बड़े जीरक, बड़े बाशऊर, बड़े साहिब फहम इंसान हैं, मगर ये बदबख्त जो मशवरे देने वाले हैं ना, ये मुसीबत है। और आपकी कमजोरी ये है कि उजन है, लोगों की बातें सुनते रहते हैं और जो किसी ने कहा उसको मान लिया। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है उनसे कह दे कि उजनो खैर लकुम, ये वजूद ऐसा है जो सुनता है हर एक की बात मगर खैर की बात को कबूल करता है, भलाई की बात को कबूल करता है, बदी की बात को रद्द कर देता है, और इसका उजन होना तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर ये तुम लोगों की बातें ना सुनता और अपने बालाखानों में छुपा रहता तो तुम हमेशा रोते रहते कि हमारी बात मोहम्मद मुस्तफा तक नहीं पहुंचती। ये तो खुदा का ऐसा आजीज बंदा है कि उसके आजीज तरीन बंदों के लिए भी झुक जाता है और उनकी बातें बड़े प्यार और मोहब्बत से सुनता है। तुम ऐसे जालिम और नाशुक्र हो कि इसके खिलाफ शिकायत कर रहे हो और ये नहीं जानते कि इसका इन मानों में उजन होना कि कामिल इंकसारी के साथ हरेक के सामने झुक जाना और उनकी बातों को सुनना और फिर ये फैसला करना कि अच्छी कौन सी है और बुरी कौन सी है, तुम्हारे लिए खैर ही खैर है। अब इस दौर में भी जमात में जो फितने उठते रहे हैं उनका आगाज तो उसी तरह हुआ जैसे कि इबलीसियत का हुआ, अना खैर उमिन हो, पहले किसी एक शख्स से टक्कर ली गई है और कहा कि हम उससे बेहतर हैं, चाहे खलीफा वक्त ने मुकर किया या जो भी उसकी हैसियत है, हम उससे बेहतर हैं और उसके ताबे नहीं हो सकते पूरी तरह। फिर खलीफा वक्त पर हमला करने के लिए ये बहाने बनाए गए कि ये फलां की बातें सुनता है। चुनाचे मैं नाम नहीं लेना चाहता मगर जमात अहमदिया में मेरे देखते देखते में बारह ऐसी बातें हुई, एक शख्स है किसी ने किसी को अपना वो हदफ बना लिया, किसी ने किसी को हदफ बना लिया। बात कहा करते थे कि ये खलीफतुल मसीह सालिस मौली अबुलता की बातें सुनकर हमारे खिलाफ हो गया, ये फलां शख्स की बातें सुनकर हमारे खिलाफ हो गया, ये फलां अमीर की बातें सुनकर हमारे खिलाफ हो गया। ये वही फितना है बिल्कुल जिसका कुरान करीम में जिक्र है और जिसको रद्द फरमा दिया गया है, लेकिन सादा लोग जिनको इन बातों का इलम ना हो वो ठोकर खाते रहते हैं। और जमात जर्मनी में भी इसी फितने ने नया सर उठाया और अमीर के मुतल्लिक ये कहा जाने लगा, और मुझे ताज्जुब है कि वो लोग जिनके दिल में कोई अमीर के लिए या निजाम के लिए गैरत थी इन बातों को बर्दाश्त नहीं करते रहे। क्यों उन्होंने मुकाबल पर उठकर ये नहीं कहा कि ये तुम्हारे शैतानी ख्यालात हैं, उनसे बाज आओ वरना मैं तुम्हारी खलीफतुल मसीह के सामने रिपोर्ट करूंगा। लेकिन सुनते रहे अंदर अंदर, एक दूसरे के कान पकाते रहे। और वो ये बातें थी मसलन कि जी अमीर साहब ये तो मुबशर बाजवा के हाथ में खेल रहे हैं, जो बात सुनते हैं मुबशर बाजवे की सुनते हैं, और इस मामले में जो फितने की खिचड़ी पक कर उबली है तो मजलिस आमला में अमीर मुरब्बी इंचार्ज ने यह कहा कि अमीर साहेब जो जो आपके मुशीर हैं उनसे बाज आ जाएं वरना यह होगा। यह मजलिस आमला के मान बात कहा, और मजलिस आमला में एक मेंबर साहब उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं अमीर साहब मैं हम आपको मुतनब्बे करते हैं, अल्फाज मुतनब्बे हों या ना हों लेकिन उसके जो तर्ज है और सख्ती है वो यही है, आपको खलीफतुल मसीह ने मशवरों के दो फोरम दिए हैं, यानी दो मुशीरों तक महदूद कर दिया है आपको, एक नायब अमीर और एक मजलिस आमला, आप इस फोरम से बाहर कदम उठाने बाहर रखने की इस्तेदाद नहीं रखते, आपको इजाजत नहीं है कि इससे बाहर निकलें। और चूंकि आप सुन नहीं रहे और बाहर नहीं बाज नहीं आ रहे हैं इन बातों से, किसी और की बातें सुनते हैं, इसलिए ये फितना पैदा होगा। जब तक आप तौबा नहीं करते और अपने आप को इन दो मुशीरों के तगोया अमलन ताबे नहीं कर लेते, उस वक्त आप अमारत नहीं कर सकते। मैंने कहा अमीर साहब को कहा बिला तासीर फौरन इन साहब को मजलिस से बाहर निकालें और अमलन आपकी सारी मजलिस आमला मौजूद है सवाए एक शख्स के जिसने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उनकी गैरत कहां गई थी? उन्होंने क्यों नहीं मुड़ के पूछा कि तुम होते कौन हो? इसके फौरन मुकर करने वाले कहां अमीरुल मोमिनीन ने यह हदायत की है कि कोई अमीर सवाए मजलिस आमला या नायब अमीर के किसी से मशवरे नहीं कर सकता? और सारे फितने के दौरान कई साल का यह फितना पकड़ा अंदर अंदर, एक दफा भी मेरे सामने यह बात किसी ने नहीं रखी कि मुबशर बाजवे ने या किसी और बाजवे ने अमीर साहब को यह गलत मशवरा दिया और यकतरफा बात सुनकर इस गलत मशवरे पर उन्होंने अमल किया। अगर यह बात होती तो और बात थी, मैं इस मामले में तहकीक करता और पता करता कि क्यों अमीर साहब इतना मुतासर है एक शख्स से कि गलत सही की पहचान के बगैर फैसले किए चले जाते हैं। बाद लोगों को मशवरों की बीमारी होती है, मुबशर बाजवा साहब को भी है ये, वो मुझे भी बड़े लंबे लंबे खत लिखते हैं और 20-20 22-22 सफे के मशवरों के खत मुझे मिलते हैं। मैंने तो कभी हौसला नहीं हारा, ना किसी को यह हक है कि कहे कि देखें आपको खुदा ने मजलिस शूरा के तक महदूद किया है या अपने नाजरों तक महदूद किया है, खबरदार जो मुबशर बाजवा के मशवरे आपने सुने। और मेरा तजुर्बा है कि आज तक उन्होंने कोई ऐसा मशवरा नहीं दिया जो जमात के मफाद के खिलाफ हो। अल्लाह ताला ने उनको मशवरों का शौक तो जरूर से ज्यादा दे दिया है, लेकिन अकल भी अच्छी भली है। खुदा के फजल से जो मशवरे हैं वो ये तो कह सकते हैं कि बेवजह बहुत ही ज्यादा मशवरे हैं, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि उनके मशवरे किसी नापाक इरादे से होते हैं या उनके मशवरों के नतीजे में जमात को कोई नुकसान पहुंच सकता है। एक वाक्य भी मेरे इल्म में नहीं आया आज तक। उनका मैं शुक्रिया अदा कर दिया करता हूं कि जजाकल्ला आपके मशवरे मिल गए, जिस हद तक जरूरत हुई मैं फायदा उठाऊंगा। या ये कह देता हूं कि अक्सर बातें तो पहले ही यही तरह हो रही हैं, मशवरे पर मशवरा आ गया, बस जजाकल्ला। तो क्या हर्ज है इसमें? उस बेचारे की आदत है, दिलदारी कर ली, खत्म हो गया मामला, उस पर इतना तैश खाना, इस तरह जल जल जाना और बुग्ज व एनाद पैदा कर लेना और जमात में प्रोपेगेंडा शुरू कर देना कि एक शरीफुल नफ्स अमीर, क्योंकि उस सिर्फ यही नहीं कि उसकी बात सुनता है बल्कि उसका रिश्तेदार भी है और उसके हाथों में खेल रहा है, ये एक लंबी प्रोपेगेंडा है। अगर इन लोगों ने तौबा न की तो खुदा की नजर में ये मकजूब होंगे और पकड़े जाएंगे। अमल ऐसे लोगों ने अपना ऐसे बैठ सख सख कर लिया है मुझसे इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं रहा, क्योंकि ऐसी बदबख्ती बार बार की नसीहतों के बावजूद, बार बार घंटे बैठकर समझाने के बावजूद इनको अकल नहीं आई। ये कहना चाहिए था, ये तरीके इख्तियार कर सकते थे कि फलां साहब मुशीर हैं, वो इनके मशवरे बार बार के गलत हो रहे हैं, ये इस तरह बार बार जमात के लिए सुबकी हो रही है, मैं लाजमन फौरी तौर पर तहकीक करता, मगर कभी ऐसा वाक्य नहीं हुआ। ये दुरुस्त है कि अमीर से भी गलतियां हो सकती हैं, हो जाती हैं, लेकिन उन गलतियों को दुरुस्त करने का एक तरीकेकार है, खलीफा वक्त मौजूद है, उससे नीचे और भी अहदेदार हैं जिनका अमीर की गलतियों से ताल्लुक हो सकता है, नाज़िर आला है, वकील आला है, सदरान मजालिस हैं, लेकिन किसी को यह हक नहीं दिया जा सकता कि खुद अमीर पर निगरान बनकर बैठ जाए और उसकी गलतियों को पकड़े। सिर्फ एक मामला ऐसा है जहां अगर खुदा ना खास्ता कभी हो तो वहां जमात को अमीर की मुताबियत में रहने का हक नहीं रहता कि वो खलीफा वक्त के खुले खुले फैसला के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है और इशरार करता है उस पर। उस सूरत में वो अमलन अपनी अमारत से इन्हिराफ कर रहा है, क्योंकि जिसने उसको अमीर मुकर्रर किया है उसके दिए हुए इख्तियार से तजावज कर रहा है। ऐसी सूरत में जो खुदा के फजल से जमात में कलदम है, सिवाय एक वाकया के जो मेरे इल्म में अपनी खिलाफत के दौरान आया, मैंने कभी किसी अमीर को इस तरह नहीं देखा।
अमीर सारे वही होते हैं जो खुदा के फजल से अतात में नंबर एक होते हैं, सबसे पहले होते हैं। मैं बता रहा था कि एक अमीर के सिवा आज तक मेरे इल्म में नहीं आया कि उसने खलीफतुल मसीह की वाज़ह हदायत की खुली खुली खिलाफवर्जी की हो,
और वो उसकी बदनसीबी थी, उसके बाद हमेशा के लिए उसको निजामे जमात में खिदमत से महरूम कर दिया गया। वरना उमरा तो फिदाइयत के पुतले होते हैं, और अमीर के वकार की हिफाजत करना खलीफा वक्त का फर्ज है। वो आपने नहीं सुना कि किस तरह खुदा अंबिया की हिफाजत करता है, किस तरह हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम किस मान के साथ किस शान के साथ फरमाते हैं कि मेरी पृष्ठ पर देखते हुए कौन खड़ा है, वो कभी मुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए खुलफाए को भी इसी सुन्नत पर अमल करना है। अंबिया खुदा से रंग सीखते हैं और खुलफा अंबिया से रंग सीखते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब तक खलीफा वक्त ने किसी को अमीर मुकर्रर किया है वो हमेशा उसकी पृष्ठ पर खड़ा रहेगा। ये नहीं हो सकता कि आप अमीर को जख्म पहुंचाएं और खलीफा वक्त उसका जवाब न दे। कोई शख्स अगर ये मुनाफिकाना जहलाना ख्याल दिल में पालता है कि मैं मुकर्रर खलीफा वक्त के मुकर्रर करदा अमीर से टकरा रहा हूं और खलीफा वक्त के पांव चूमता हूं, तो वो झूठा है। ये शैतानी ख्यालात हैं। खलीफा वक्त ऐसे पांव चूमने वाले के चूमने पर ठोकर भी नहीं मारता। वो हर कीमत पर अपने मुकर्रर करदा अमीर की पुष्ट पर खड़ा रहेगा, सवाय इसके कि उस पर यह साबित कर दिया जाए कि वक्त आ गया है कि इस अमीर को बदल दो। फिर यह कहा गया कि अमीर की एक पार्टी है वो ऐसे, और उसके मुकाबले पर एक और पार्टी है कि हम अगर आप इस तरह चलेंगे तो फिर ये पार्टियां कायम होंगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जमात में सिर्फ एक पार्टी है, और सिर्फ एक पार्टी, और वो खुदा की पार्टी है, और उसी पार्टी की नुमाइंदगी अमीर करता है। उसके सिवा जितनी पार्टियां हैं वो शैतानी पार्टियां हैं, उनकी वो पार्टियों का जिंदा रहने का हक ही कोई नहीं। इसलिए सर उठाकर अमीर से ये बातें करना कि हम जानते हैं किन औरतों की तुम बातें सुन रहे हो, कौन से तुम्हारे टोले हैं जो तुम्हारी मदद कर रहे हैं, ये खुली खुली बगावत और शैतानी ख्यालात हैं। इनको किसी कीमत पर जमात में पनप नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैं अमीर साहब को भी खूब अच्छी तरह इस बात से आगाह करता हूं कि आप शेरों की तरह डर जाएं। खलीफा वक्त आपके साथ है और सारी जमात अहमदी आपके साथ है, जर्मनी की जमात भी आपके साथ है, और कुल आलम की 126 जमातें आपके साथ हैं। और खुदा की कसम जिसकी पुष्ट बनाई आज का खलीफा कर रहा होगा या फिर वक्त का खलीफा कर रहा होगा, उसकी पुष्ट बनाई खुदा करेगा, और हमेशा खुदा उसकी पुष्ट बनाई करेगा। वो लोग जो जहालत से बगावत के सर उठाते हैं उनके सर कुचले जाएंगे। बड़े बड़े पहले भी लोग पैदा हुए थे, उन्होंने ये आवाजें बुलंद की थी कि हमारे जत्थे ज्यादा हैं। कहां गए उनके जत्थे? टुकड़े बिखर गए उनके। कहां गई उनकी इज्जतें? सारे खिलाफत से वाबस्तगी के नतीजे में थी। वो लाहौरी जमातों के हाल क्या हुए, वो बड़े बड़े जो अंजमन के सरबराह बने फिरते थे उनके हाल क्या हुए, किस तरह खलीफतुल मसीह अव्वल ने उनको ललकारा जो इनका पुतला थे। मैं भी खुदा के फजल से इज्जत का पुतला हूं, मगर जहां खुदा के निजाम के वकार का सवाल है वहां किसी कीमत पर मैं अपने सर को झुका नहीं सकता। बाज लोगों ने मुझे कहा आप तो मोहब्बत के समंदर हैं। मैं उनको बताता हूं कि समंदरों में भी तलातम पैदा हुआ करते हैं, और इस मोहब्बत के समंदर में अगर खुदा की गैरत की खातिर तलातम पैदा हुआ तो जितने शैतानी जहाज हैं वो सारे हल्क हो जाएंगे, और किसी की मजाल नहीं होगी कि वो इस तूफान का मुकाबला कर सके। इसलिए अमीर साहब को मैंने हदायत दी है, और मैं तमाम जमात जर्मनी से इसकी तवक्को रखता हूं कि वह कुल्लियतन उनके साथ वफादारी का इकरार करें, और मुझे यकीन दिलाएं बाद में रेजोल्यूशन के जरिए कि हम में से हरेक जो आपकी बैक में दाखिल है वो अपने अमीर की ना सिर्फ अताअत करेगा बल्कि पूरी तरह उसका एहतराम करेगा, उसका अदब करेगा, उससे टकराने वालों के टुकड़े उड़ा देगा, यानी उनकी हैसियत को शुमार नहीं होगी, उसकी शुमार में नहीं आएगी, जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि उनकी अनानियत के टुकड़े उड़ा देगा, उनके तकब्बर को पारा पारा कर देगा। और मुझे यकीन है मैं जमात को हर दूसरे इंसान से ज्यादा बेहतर समझता हूं। आप मेरे दिल में धड़क रहे हैं, मैं आपके दिल में धड़क रहा हूं, हम एक दूसरे की रंजों से वाकिफ हैं, हम एक दूसरे की नब्जों को जानते हैं। इसलिए मैं आपकी तरफ से कामिल यकीन के साथ ऐलान करता हूं कि ये जज्बात जो मेरे दिल के जज्बात हैं, आज सारी दुनिया जर्मनी की जमात के जज्बात हैं, आज सारी दुनिया की जमातों के जज्बात हैं। बस क्या खौफ है आपको इन फितनागरों से जो बार बार सर उठाते हैं तकबर और अनानियत से, ना ये पहले कभी जमात का कुछ बिगाड़ सके थे, ना आइंदा कुछ बिगाड़ सकेंगे। आपको मैंने तफसील से ये बातें इसलिए बताई हैं कि बासादा लॉ आखिरी मुकाम पर पहुंचने से पहले पहले ठोकरे खा जाया करते हैं। जब इस किस्म का मुकाबला खुलकर होता है तो फिर वो तौबा भी करते हैं, वापस भी आते हैं, लेकिन जख्मी होने के बाद। और चंद एक गिनती के बदनसीबों के सिवा इन फितनागरों के साथ कोई भी नहीं रहा करता कभी, खुद इनके साथी इनको छोड़ दिया करते हैं। और इस मजमून को भी कुरान करीम ने बहुत खोलकर जंगे बदर के मामले के हालात के बयान करते हुए बयान फरमा दिया है। कोई फितने का पहलू ऐसा नहीं जो कुरान करीम ने खाली छोड़ा हो, जिसके मुतल्लिक हमें तंबीह न कर दी गई हो। बस अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें जो आम हालात की जिम्मेदारियों से बहुत बढ़कर हैं। याद रखें, हम सदी के सर पर खड़े हैं, हम बहसियत मजमूई इस सदी के इमाम बनाए गए हैं। आज की गफलतें और आज की ठोकरें आने वाले 100 सालों पर असरअंदाज होंगी, इसलिए सोचकर मजबूती के साथ कदम उठाएं, सिलसिले की रवायात की हिफाजत करें। और हर ऐसे शख्स को जिसकी अनानियत सर उठाती है उसको रद्द कर दें, उसे नामुराद करके दिखा दें। अल्लाह ताला हमारे साथ हो और हमेशा हमें हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए आला उसलूब के मुताबिक अतात और अदब के हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر